नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत से पुतनाबद्ध लीला। तो श्लोक लिखा हुआ है बोर्ड पर तीसरे स्कंद के अध्याय दो से कृष्ण स्मृति श्लोक संख्या 23। अहो बकी यम यस्तन कालकूटम जिंघासया अपायात अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततः अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिंघासयापायपासाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततन्या कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिंघासया पायद अपीय साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यां कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्थलकालकूटम् जिंघासयाप्यात् अपि असाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यां कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कोई माता जी ओहो ये अंग्रेजी किताब है तो मैं अंग्रेजी पढ़ लूंगा अनुवाद तात्पर्य और क्लास होगी हिंदी में। ओहो अल्लास बकी द सी डेमन पुतना यम हुम अस्तना अपर ब्रेस्ट काला डेडली कुटम पॉइजन जिंघाशया आउट ऑफ एनेवी अपायात नरिस्ट अपी आल्दो असाध्वी अनफेथफुल लेभे अचीव्ड गतिम डिस्टिनेशन धात्रे उचिताम जस्ट सुटेबल फॉर द नर्स ततः बियॉन्ड हुम अन्यम अदर कम हु एल्स वा सर्टेनली दयालुम मर्सीफुल शरणम शेल्टर ब्रजेमा आई शैल टेक। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय डिवाइन ग्रेस इस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जाय। अल्लास हाउ शैल आई टेक शेल्टर ऑफ वन मोर मर्सीफुल देन ही हु ग्रांटेड द पोजिशन ऑफ द मदर टू ए सी डीमन पुतना ऑल्दो शी वॉज अनफेथफुल एंड शी प्रिपेयर डेडली पॉइजन टू बी सक फ्रॉम हर ब्रेस्ट। परपट हियर इज एन एक्साम्पल ऑफ एक्सट्रीम मर्सी ऑफ द लॉर्ड। श्री श्री गौरताय की जाय। श्री श्री राधराश बिहारी की जाय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जाय। इवन टू हिज एनिमी इट इज सेड दैट ए नेबल मैन एक्सेप्ट द गुड क्वालिटी ऑफ ए पर्सन ऑफ डाउटफुल कैरेक्टर जस्ट एज वन एक्सेप्ट नेक्टर फ्रॉम द स्टॉक ऑफ पॉइजन। इन हिज बॉयहुड ही वॉज एडमिनिस्टर्ड डेडली पॉइजन बाय पुतना ए सी डीमन हु ट्राइड टू किल द वंडरफुल बेबी एंड बिकॉज शी वॉज ए डीमन इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हर टू नो दैट द सुप्रीम लॉर्ड इवन दो प्लेइंग द पार्ट ऑफ ए बेबी वॉज नो वन लेस देन द सेम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। हिज वैल्यू एज सुप्रीम लॉर्ड डिड नॉट डिमिनिश अपॉन हिज बिकमिंग ए बेबी टू प्लीज हिज डिवोटी यशोदा। The Lord may assume the form of a baby or a shape other than that of a human being, but it does not make a slightest difference. He is always the same supreme. A living creature, however powerful he may become by dint of severe penance, can never become equal to the Supreme Lord. Lord Krishna accepted the motherhood of Putana because she pretended to be an affectionate mother, allowing Krishna to suck her breast. The Lord accepted the least qualification of living entity and awarded him the highest reward. That is the standard of his character. Therefore, who but the Lord can be the ultimate shelter? ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्जनमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महादेवी ऐमा पुरो विभो निरमायसेते यदमूषुपुरुषं भुक्ते गुणांशोडशोडशात्मकम् शूलम् कृशिष्ठम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवयेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज, जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे बुखार लग गया, क्या सीजनल चेंज। तो आज हम लोग यहां बैठकर भागवत सुन रहे हैं। यह जो श्लोक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसी श्लोक के चलते आज हम लोग भागवत सुन रहे हैं। यदि यह श्लोक नहीं होता तो भागवत नहीं सुन पाते। भागवत में दो श्लोक है, एक श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, बरहा पीडम नटोर अपो कर्णय कर्णिकारम, और दूसरे श्लोक में भगवान के कृपा का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप लोग सुन चुके हैं पहले कि श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी संसार से बड़े डर रहे थे, संसार में नहीं आना चाहते थे। आए भी संसार में तो घर छोड़कर के भाग गए। पहले तो अपने मां के गर्भ से निकलिए नहीं रहते 12-13 साल तक, जब भगवान एश्योर किए कि तुम्हें कुछ नहीं होगा आ जाओ, तब वे आए बाहर। आने के बाद भी घर द्वार छोड़कर चल दिए। उनके पिताजी व्यासदेव पुकारते रहे, बेटा बेटा बेटा, लेकिन सुनाई नहीं पड़ा, चल दिए, उत्तर नहीं दिए। व्यासदेव बड़ा तपस्या किए थे सुखदेव के लिए, वे एक ऐसा शिष्य एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो कि इस भागवत का प्रचार कर सके, लेकिन वो भी चल दिए। और शुरू से ही वे ब्रह्म के उपासक थे, भगवान के उपासक थे। भगवान के तीन स्वरूप हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, तो ब्रह्म स्वरूप का उपासना करते थे, ध्यान मग्न होकर के भगवान का ध्यान करते थे। तो व्यासदेव सोचे कि ये भागवत महापुराण जन कल्याण के लिए लिखा गया है गुरु के आदेश के अनुसार, और जब जन कल्याण होगा सबके लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब व्यासदेव समस्त वैदिक शास्त्रों का रचना कर चुके थे तो ये प्रसन्न नहीं थे, और नारद जी ने कहा कि वैष्णव और विष्णु के प्रसन्नता के लिए तो काम नहीं किए हो, तो विष्णु और वैष्णव के प्रसन्नता के लिए उन्होंने भागवत की रचना की। तो व्यासदेव अपने कुछ शिष्यों को भेजे भागवत के विभिन्न प्रकार के श्लोक सुनाते हुए। तो ये शिष्य लोग उसी रास्ते में गए जहां पर सुखदेव जी भगवान का ध्यान कर रहे थे। ब्रह्मर्षि थे वे उस समय। तो जब यह भागवत का श्लोक जब सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो भागवत पवित्र है, भागवत पवित्र है, भागवत का एक शब्द भी यदि कोई कहता है श्रीमद्भागवतम यत्र श्लोक श्लोक अर्धमेव च तत्रारपि भगवान कृष्ण वल्लवी भी विराजते। यहां पर एक श्लोक या आधा श्लोक भागवत का होता है तो भगवान श्रीमती राधिका के साथ में वहां पर विराजमान रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जब यह सुन रहे थे श्लोक तो उनका ध्यान टूट पड़ा। तो सुने कहिए का श्लोक, जब भगवान के सौंदर्य का वे वर्णन सुने, बराहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम रंद्रान वेणु, जब सुने कि किस प्रकार से भगवान अपने कान पर कनैल का फूल लगाए हुए हैं और मोर मुकुट लगाए हुए हैं, बराहा पीडम नटवर बपो, नटवर वेश धारण करते हुए नाचते हुए और बांसुरी के छिद्र पर अपने उंगली को डाल कर करके ग्वाल बालों के साथ में गाते हुए ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान के सौंदर्य को सुन कर करके सुखदेव गोस्वामी बड़े मोहित हो गए और वे तुरंत डिसाइड किए कि अब मैं उन परम पुरुष का सेवा करूंगा जो ऐसे हैं। तो फिर उनके मन में ऐसा बात आया कि लेकिन एक कृष्ण तो मैं सुना के माखन मिश्री खाने वाले हैं, मैं तो बैरागी लंगोटी और कंठी वाला हूं, मैं माखन मिश्री कहां से लाऊंगा इनके लिए। तो पहले तो निर्णय किए कि नहीं नहीं इनका मैं भजन करूंगा, फिर कहे कि नहीं अब इनका भजन नहीं करूंगा, फिर ध्यान में लग गए। तो फिर व्यासदेव के शिष्यों ने यह श्लोक कहा, अहो वकीयम स्तनकालकूट जिंघासया, जिंघासया पायद अदपि असाध्वी लेभे गतिम धात चिताम पतन्यः कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। भगवान के दया का, भगवान कितने दयालु हैं कि जो बकी, बकासुर की बहन, पुतना कृष्ण को मारने के लिए अपने अस्तन में हलाहल जहर लगा करके आई थी और वह द्वेष पूर्ण थी, उस पुतना को भी भगवान ने वह पद दिया जो कि एक धात्री के लिए उचित हो। लेभे गतिम धात्री उचिताम ततुन्यः, जो उचित है एक धात्री के लिए, यानी यशोदा धात्री है, कई एक प्रकार की मां होती है, सात प्रकार की, उसमें से एक मां है जो जन्म देती है, एक मां जो पालन करती है और जो पालन करती है वह माता धात्री कहलाती है। हम लोग जानते हैं कृष्ण का जन्म हुआ था कारागार में, देवकी जी के गर्भ से भगवान जन्म लिए थे, लेकिन यशोदा ने उन्हें पाला था। तो लेभे गतिम धात्र चिताम ततोन्यः कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। धात्र चिता है, धात्री के जो उपयुक्त स्थान है, गति है, वह प्राप्त की यह पुतना जो द्वेष बस अपने अफतन में कल हलाहल जहर लगाकर कृष्ण को मारने गई थी, कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा, उनसे और कौन दयालु हो सकता है कि कोई उनको मारने जाए और उनको हाईएस्ट पद दे दें, उनसे कौन बड़ा दयालु हो सकता है। यही सुनकर के सुखदेव गोस्वामी भक्त बन गए। बस बस बस, अब यही हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। और इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उन शिष्यों से मिले और कहे, भाई तुम लोग ये श्लोक कहां से पढ़े, कहां से सीखे? तो कहे तो दो चार श्लोक है, हमारे गुरुजी 18,000 श्लोक का रचना किए हैं। कौन गुरुजी हैं? तो महर्षि वेद व्यास, अरे तो हमारे पिताजी हैं। तब वे आए वहां पर और व्यासदेव से भागवत श्रवण किए और बाद में सुखदेव गोस्वामी को सुनाए। तो आज का जो क्रम है ये कथाक्रम में, आज पुतना लीला के ऊपर हम लोग सुनेंगे। तो संक्षिप्त में, जिसे सुखदेव गोस्वामी कन्विंस हो गए थे भजन करने के लिए, कमवा दयालु शरणम ब्रजेम, अरे उनसे और कौन दयालु हो सकता है जिनके शरण में जाए। वास्तव में कृष्ण का दया हम लोग देखें तो कोई भी भक्त बन सकता है। दुख की बात है कि हम लोग कृष्ण के दया को नहीं देखते हैं। हम कुछ भी नहीं करते हैं, कृष्ण फिर भी हमारा भरण पोषण करते हैं। हम उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं और कुछ करें तो क्या, कहना ही क्या है। पुतना कुछ की, भले ही वो 20 दी। ये भौतिक संसार जो है ये द्वंद्वात्मक संसार है, यहां पर अमृत और विष होता है, सुख और दुख होता है, दिन और रात होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत चित जगत है, वहां पर द्वंद नहीं है। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंदमोहीन भारत, यह जो द्वंद है इस संसार में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई द्वंद नहीं है। वहां पर अमृत और विष नहीं है, वहां केवल अमृत ही अमृत है। तो कृष्ण के लिए यह विष नहीं है। सामान्य रूप से संसार में विष है, लेकिन कृष्ण अब्सोल्यूट है और उस प्लेटफॉर्म पर वह विष नहीं है। तो पुतना दी, कुछ देने गई थी। कौन क्या देखता है भगवान, यह नहीं देखते हैं। कोई क्या देता है, बस वो भावना देने की जो भावना है वही भगवान देखते हैं। कारण रहित दयाल हैं भगवान। भगवान कारण नहीं देखते हैं, वो केवल देखते हैं कि हमारे शरण में आया है, कुछ देना चाहता है, चाहे सौरी हो, चाहे विदुरानी हो, चाहे पुतना ही क्यों ना हो। ये देने आए थे और भगवान उसे स्वीकार किए। भगवान एडवर्टाइज नहीं कह रहे थे 20 देकर हम मारने आए तो भगाओ, नहीं, भगवान स्वीकार किए। और चूंकि वो दी 20 दी, इसलिए भगवान उसको इतना बड़ा पद दे दिए। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, हम लोग देना नहीं चाहते हैं। भगवान कितना कंसेशन दिए हैं, गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्तया अपरक्षति, अरे कुछ तो दो। हम लोग इतने बेईमान हैं कि कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, सब कुछ अपने ही हड़पना चाहते हैं। अरे साक्षात रूप से नहीं दे सकते हैं तो मन में भी देते हैं तो उसका भी पुण्य मिलता है। मन में ही मान लो जन्माष्टमी है तो हम भगवान के लिए कुछ करेंगे जन्माष्टमी के लिए, केवल मन में मान लो उसका भी पुण्य प्राप्त होता है। और साक्षात देने से तो कहना ही क्या है। तो पुतना देने गई थी, दूध पिलाने गई थी, इसलिए सुखदेव जी भक्त बने। कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, उनसे दयालु कौन है। तो चलिए, जिस पुतना ने सुखदेव जी को भक्त बनाया, हम लोग उस पुतना का कथा सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हम लोग भी एक दिन भक्त बन जाए पुतना के कृपा से। बाल लीला सप्तविधा प्रथंसा निरूप्यते बालभावरताम जेहि तेसाम रोदत तो भवे। सात प्रकार से बाल लीला का वर्णन किया गया है। उसमें से जो प्रथम लीला है उसमें भगवान अपना रोष दिखाए हैं और वह है पुतनावध लीला। भगवान राम भी पहले बार इंकाउंटर किए तो स्त्री के साथ में है ताड़का, और कृष्ण भी इंकाउंटर किए तो पुतना स्त्री के साथ में। तो कथा इस प्रकार से पहले इसका अर्थ समझे, पुतना का अर्थ क्या होता है। पुत न, पुत मतलब पवित्र और न मतलब नहीं, जो कभी पवित्र न हो वो पुतना है, जो हमेशा अपवित्र रहे। और पुत नयति इति पुतना, जो पवित्र को भी नहीं छोड़ती है वह है पुतना। पुत को भी जो पवित्र है नयति, उसे नहीं छोड़ती है, यानी उसको भी हनन करने के लिए चली आती है मारने के लिए, वह है पुतना। भगवान का आविर्भाव हो चुका है ब्रज में। भागवत महापुराण के चार प्रथम स्कंद के चार अध्यायों में भगवान के का वर्णन किया है जन्म का, और पांचवा अध्याय में नंदोत्सव का वर्णन है, और छठे अध्याय में यह पुतना बद्ध। जननम वर्णनम अस्तोत्रम सांत्वनम गमनम तथा षड विधो भगवान अत्र तृतीय निरूप्यते। तो भगवान के जन्म का, उनके सौंदर्य का, वर्णन का, जो संतावना दिए देवकी वसुदेव को उसका, और भगवान कहे कि हमको आप यहां से ले चलो नंद गोकुल गमनम, इन सब का वर्णन इन चार अध्यायों में चार रूप से किया गया है। पांचवा अध्याय नंदोत्सव है, नंद बाबा के यहां आनंद का जन्म हुआ था। प्रथम श्लोक जो है पांचवें अध्याय का, वहां पर श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंद हतु आत्मजा उत्पन्ने जातु अहलाद महामना। जातु अहलाद, अहलाद मतलब आनंद, जातु मतलब उत्पन्न हुआ, अहलाद आनंद आए थे नंद बाबा के घर पर। कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद बाबा के यहां आनंद की उत्पत्ति हुई थी, आनंद आए थे। भगवान आनंद कंद हैं, सर्वाकर्षण हैं, जय श्री गौनिताय की जाए। तो वे कृष्ण नंद बाबा के यहां पर आए हुए थे। अब नंदोत्सव मनाया जा रहा था, पांच दिन तक लगातार नंदोत्सव मनाया गया। नंद बाबा के यहां कृष्ण का दर्शन करने के लिए कई लोग आते थे। तीसरा दिन था, नंदोत्सव मनाया जा रहा था, शाम का लगभग समय हो चुका था। तो नंद बाबा एक व्यक्ति को देखे और बड़े आश्चर्य में चकित हो गए। वह व्यक्ति और कोई नहीं था, वसुदेव जी का बहुत विश्वास पात्र सेवक था। बहुत लोग आए कृष्ण का दर्शन करने के लिए कि, लेकिन नंद बाबा को उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना कि उस वसुदेव के विश्वास पात्र सेवक को देख करके। तो वसुदेव जी का जो विश्वास पात्र सेवक था उसको नंद बाबा एकांत में बुलाए और उसे पूछे कि भाई क्या हालचाल है, सब बात होने लगी। तो सेवक कहा क्या कहे महाराज, आप तो सब कुछ जानते ही हैं और आप मुझे देखकर समझ सकते हैं कि हम लोग कितने त्रस्त हैं। वसुदेव जी हमको आपके पास भेजे हैं, लेकिन कंस के भय से मैं राजमार्ग से नहीं आकर के जमुना जी में तैरते हुए आया हूं। आप देख सकते हैं मेरा अभी भी कपड़ा भींगा हुआ है ताकि कंस देख ना पाए या उसके गुप्तचर देख ना पाए, किसी प्रकार से छिप करके मैं आया हूं। तो फिर हाल चाल होने लगा और पहले तो वह सेवक वसुदेव जी के तरफ से नंद बाबा को बधाई दिया कि उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है, और उसके बाद में वसुदेव जी के विषय में नंद बाबा पूछने लगे। तो वह सेवक बड़ा दुखी था और दुखी मन से कहता है क्या करें, हमारे महाराज पर दुख का जो पहाड़ टूटते आ रहा है एक के बाद एक, तो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। ये आठवां जो संतान था वो पुत्र भी नहीं था, एक पुत्री जन्म ली थी, लेकिन यह निर्दयी कंस उसको भी नहीं छोड़ा। तो पूरा वृतांत सेवक बतला रहा था और यह भी बतलाया कि किस प्रकार से वह देवी के रूप में प्रकट हुई और उसने आकाशवाणी किया, तब अब हम लोगों को थोड़ा शांति है कि अब कुछ दिन का और मेहमान है कंस। लेकिन बाद में वह कंस आकर के देवकी और वसुदेव के यहां बहुत प्रायश्चित किया, प्रार्थना किया, क्षमा मांगा, उन्होंने को अब छोड़ दिया है। लेकिन जब अपने सभा में गया और सभापतियों से अन्य लोगों से बात करने लगा तो सबने यह निर्णय किया है कि महाराज कंस का जो शत्रु है या जो मृत्यु है, जो काल है, वह जन्म ले चुका है, इसलिए आज से 10 दिन के अंदर के जितने बच्चे हैं उन लोगों को मार डालना चाहिए। तो इसीलिए वसुदेव जी भेजे हैं आपके पास हमको कि आप जाइए, आइए मथुरा और कंस को कर चुका दीजिए, पहला नंबर, और बाद में आप वसुदेवी से मिलिएगा। तो नंद बाबा ने कहा कि उन्होंने कुछ कहा था कि बस इतना ही उन्होंने कहा, और क्या कहना है वो आपसे बाद में बात करेंगे, अपना काम खत्म। तो नंद बाबा सेवक का खूब खातिरदारी किए, नंद बाबा को जाने का मन नहीं कर रहा। फिर नंद बाबा ने कहा उसको कि भाई तुम जाओ और भैया वसुदेव को कह देना कि मैं आ रहा हूं। तीसरे दिन यह संदेश मिला था, 2 दिन और लग गया, 5 दिन हो गया। पांचवें दिन नंद बाबा गए मथुरा। जब जा रहे थे उनका मन तो नहीं कर रहा था जाने के लिए, बार बार कृष्ण की तरफ देख रहे थे, उनका दिल लगा हुआ था कृष्ण में, लेकिन वसुदेव जी का संदेश था कि कंस यह रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि 10 दिन के जितने बच्चे हैं उन सबको मार डालना चाहिए, तो आप कम से कम कृपा करके आकर के कंस को कर चुका दीजिए तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, शायद आपके बच्चे को नहीं मारेगा। बस इसीलिए तो नंद बाबा कृष्ण को बहुत प्यार करते थे, तो भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान का रक्षा करने के लिए वे अब कंस के पास जाने के लिए उद्दत हुए, तैयार हुए, नहीं चाहते हुए भी। तो जो धाय थी, जो कृष्ण का देखभाल कर रही थी, वह समझ रही थी कि नंद बाबा कृष्ण को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, एक टक देख रहे हैं कृष्ण की तरफ। तो धाय कृष्ण से कह रही है कि लाला, तुम्हारे बाबा आपको मथुरा जाना है महाराज कंस को कर देने के लिए, क्या बाबा जा सकते हैं? कृष्ण नंद बाबा की तरफ देखे, अधिपति जी गोस्वामी कहते हैं कि मानो कृष्ण मुस्कुरा करके परमिशन दिए कि आप जाइए। इस प्रकार से नंद बाबा वहां से गए मथुरा। कंस जब सुने कि नंद बाबा आए हैं, पहले तो मोटर गाड़ी नहीं था, चकड़ा था, बैलगाड़ी था, तो बैलगाड़ी पर जो घी दही दूध इत्यादि सब लाद करके, कुछ हीरे जवाहरात भी थे, सब लाद करके कंस को कर देने के लिए लेकर गए। एक आचार्य कहते हैं कि दूध दही का कर तो ठीक था, लेकिन हीरा जवाहरात की जरूरत क्या थी? तो इसलिए कि नंद बाबा नंदोत्सव के समय लोगों को दे रहे थे, जो जो लोग कुछ ला रहे थे सबको कुछ दान देते, ब्राह्मणों को दे रहे थे गाय, वैश्यों को धन, ऐसे सबको दे रहे थे। अब राजा को क्या देना चाहिए, अब कंस को क्या देना चाहिए? दूध दही तो कर हो गया ठीक है, लेकिन पुत्र के जन्मोत्सव में आनंद का उत्सव था, तुरंत बाबा दोनों हाथ से सबको दान दे रहे थे, तो कंस को देने के लिए हीरा जवाहरात लेकर गए, क्योंकि राजा है ना, तो राजा के लिए उसके उपयुक्त वस्तु ले जाना चाहिए। जब नंद बाबा को कंस देखा तो बड़ा खुश हुआ, और वहां पर थोड़ा हास्य रस को बताया गया है। कंस नंद बाबा से हंसी मजाक करने लगा कि भाई सब जैसे वसुदेव जी थे, वसुदेव जी और नंद बाबा दोनों भाई हैं एक तरह से। नंद बाबा के पिता थे महाराज प्रजन्य, प्रजन्य के पिता की तीन पत्नियां थी, एक वैश्य कुल की थी, एक क्षत्रिय कुल की थी और एक शूद्राणी थी। तो जो वैश्य कुल की जो थी उसे नंद बाबा महाराज प्रजन्न हुए थे, और जो क्षत्रिय कुल की थी उसे महाराज सुरसेन हुए थे, यानी वसुदेव जी के पिता। तो वसुदेव जी के पिता महाराज सुरसेन और इधर नंद बाबा के पिता महाराज प्रजन्य दोनों एक ही बाप के बेटे थे, दो मां थी लेकिन एक बाप के बेटे थे। एक दिन हम कोटक जी घर गए थे और आ रहे थे लिफ्ट में, तो दो लड़के एक समान लग रहे थे, तो मैंने क्या क्या तुम लोग जुड़वा भाई हो क्या, तुम लोग भाई हो? तो एक लड़के यस वी हैव सेम फादर बट टू मदर। बाद में पता चला कि वो मुस्लिम के दोनों लड़के थे, तो दो पत्ते थे उसको, सेम फादर बट टू मदर, तो ही मुझे याद आ गया। तो ऐसे ही प्रजन्न बाबा के और महाराज सुरसेन के पिता एक ही थे और दो माता थी, तो उस रूप से नंद बाबा वसुदेव भाई थे। तो हंसी मजाक हुआ करता था, कंस भी उसी समय व्यस्त था तो वहां भी मजाक होता था। तो कंस कहा कि हे महाराज वसुदेव नंद बाबा, मुझसे क्या गलती हो गई है? मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, क्योंकि अपने हाथों से अपने भांजे को मार डाला हूं, छह बच्चों को मारा हूं, लेकिन आपसे हमारा कोई बैर नहीं है, किसी से हमारा कोई बैर नहीं है, वसुदेव से वसुदेव हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन क्या करें, मरता क्या नहीं करता, अब तो मृत्यु का बात था, इसलिए मैंने ऐसे पाप कर दिया, लेकिन आपसे तो हमारा कोई बैर नहीं है। तो नंद बाबा कंस को जानते थे जब कंस राजा नहीं था, लेकिन जब राजा जब कंस था, राजा तो बहुत अच्छा था, कंस का क्वालिटी देखा जाए तो बहुत अच्छा था, जब राजा बन गया तब तो बहुत क्रूर हो गया था, वो भी जब आकाशवाणी उसे सुनाई पड़ा तब तो बहुत क्रूर हो गया था। तो उसके क्रूरता को नंद बाबा सुने थे और इसलिए थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहते थे, थोड़ा भय जैसा। तो कंस कहा कि महाराज नंद, आप भयभीत न हो, मैं वही हूं, आपका ही मित्र हूं, मैं आपका बैरी नहीं हूं। आप सब, मुझे पता चला है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है बुढ़ापे में, आप सब लोगों को बुला रहे हो लेकिन मुझे बुलाना भूल गए, मुझे बुलाए भी नहीं, पता भी नहीं बताए, मुझे क्या गलती हो गई। अरे आप बुलाए तो मैं जरूर आता, कितना भी राजा हो तो क्या हो गया, लेकिन आपका मित्र हूं मैं जरूर आता, बुलाना चाहिए था। तब नंद बाबा कहे कि महाराज इसलिए मैं आपके लिए कुछ उपहार लेकर के आया हूं पुत्र के जन्म। इस प्रकार से नंद बाबा सब किए और कंस उनके लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया, रहने खाने पीने सब क्या। लेकिन बस नंद बाबा का मन एक सेकंड भी वहां नहीं लग रहा था, जो ही कर चुका लिए उनका मन सीधे ब्रज कृष्ण के पास पहुंच गया। केवल शरीर मथुरा में था लेकिन उनका मन जो था वो ब्रज पहुंच गया था। अब एक काम तो हो गया, कर चुका दिए, अब दूसरा काम बाकी था और वह काम था वसुदेव जी से मिलना। तो वसुदेव जी हाउस अरेस्ट थे, खुले हुए थे, कहीं जा सकते थे। जब आठवां संतान गर्भ में था उस समय देवकी और वसुदेव के पैर में बेड़ी लगा था, उसके बाद पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं, खुले थे, कहीं जा सकते थे। तो वसुदेव जी कृष्ण से नंद बाबा मिलना चाहते थे, तो ये अपने सेवक से कह दिए थे कि वे कहां मिलेंगे। वे कहते मैं पड़ाव पर मिलूंगा। पड़ाव होता है जहां पर, पड़ाव जानते हैं आप लोग, कितने लोग जानते हैं पड़ाव? बनारस के नजदीक मंगलसराय में एक पड़ाव है, बहुत बड़ा फेमस, यहां सब ट्रक खड़ा होते हैं, वो ट्रक का पड़ाव है, है? जैसे यहां आगार बोलते हैं महाराष्ट्र में, आगार बस का आगार होता है, यहां से बस खाते हुए, और हिंदी में उसे पड़ाव कहते हैं, यहां पर रात्रि विश्राम हो। तो बैलगाड़ी लेकर के जाते थे और शहर में बैलगाड़ी पड़ाव में खोल देते थे बैल को वहां पर, और चले जाते थे काम करके, शाम को आते थे, फिर वहां से चले जाते थे। तो पड़ाव पर नंद बाबा से मिलने वसुदेव जी आए और बहुत छिप करके आए। तो यहां पर जब नंद बाबा के यहां जब संदेश आया था कि आप आ करके और मथुरा में कंस को दे दीजिए उसका कर, तो वहां से मैं कथा शुरू किया था। सुखदेव कहते हैं, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरागत नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरु उद्वह। हे कुरु उद्वह, हे महाराज परीक्षित। इस प्रकार से जब नंद बाबा सुने तो गोपान गोकुल रक्षायाम सभी गोपों को बुलाए और गोकुल के रक्षा के लिए, कृष्ण के रक्षा के लिए उन लोगों को निरूपित किए कि तुम लोग कृष्ण का देखभाल करना। जो कृष्ण सबके रक्षक हैं, आज उनकी रक्षा का सवाल था। यह है भक्तों की भक्ति। कृष्ण सबकी रक्षा करने के लिए आए हैं, उनके रक्षा का भार ग्वाल बालों पर दे करके निरूप्य मथुराम गता मथुरा के लिए प्रस्थान किए। क्यों? नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातो कृद्व, कंस के वार्षिक कर को देने के लिए। जब दोनों मिले नंद और वसुदेव, जब एक दूसरे को देखे तो मानो ऐसा लगा कि मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। बहुत दिन के बाद नंद बाबा और वसुदेव मिल रहे थे। नंद बाबा वसुदेव जी के विषय में सब कुछ सुने थे कि कितना पीड़ा के थ्रू उनका जीवन बीत रहा है देवकी और वसुदेव का। जैसे हम किसी को खूब स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, और दूसरे के पैर में कांटा चुभ जाता है, तो कांटा उसके पैर में चुभा है लेकिन दर्द हम लोगों को होता है। जैसे ब्रज की गोपियां जब कृष्ण गोचारण करने जाते थे तो यह सुन करके ही कि कृष्ण चप्पल जूता नहीं पहनेंगे और उनके पैरों में कांटे पत्थर कंकड़ लगेंगे, गोपियां रावणी में मूर्छित हो जाती थी ये सुन करके, इसके भाव को समझ करके। तो प्रेम की यही परिपाटी, जब इसे प्रेम करते हैं उसके दुख सुन करके व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो नंद बाबा बड़े दुखी थे वसुदेव जी को के विषय में सुन करके। वसुदेव उपसुत्य भ्रातरम नंद आगत ज्ञात्वा दत्त करम रागे जो तद अमोचनम। जब वे वसुदेव जी सुने कि भाई नंद अब आ गए हैं, दोनों और कंस को कर चुका चुके हैं, तो वहां पर मिले। सुखदेव जी कहते हैं जब मिले तो यहां पर दिए हैं, तम दृष्टवा स उत्थाय देह प्राण इवागतम प्रीतम प्रियतम दौर्यम सस्वजे प्रेम विह्वल। नंद बाबा बैठे हुए थे, वसुदेव जी आ रहे थे। तम दृष्टवा सहसा उत्थाय, जब ही देखे कि वसुदेव जी आ रहे हैं नंद बाबा तुरंत खड़ा हो गए, जैसे वैसे ही लगाए थे देह प्राण इवागतम, जैसे देह में पुनः प्राण आ गया हो, मृतक देह में प्राण आ गया हो। प्रीत प्रियतम दौर्भ्यम, प्रेम से अपने प्रेमी को गलबाहू दिए यानी आलिंगन किए। दो बात है, एक आजकल लोग हाथ मिलाते हैं, भागवतम में हाथ मिलाने का भी वर्णन है, लेकिन ये फॉर्मालिटी है, और गलबाही देना ये प्रेम है। भगवान जब ब्रह्मा जी से मिले, ब्रह्मा जी से भगवान जब खुश हो गए और भगवान ब्रह्मा जी से मिले तो ब्रह्मा जी से हाथ मिलाए, ये फॉर्मालिटी है कि ब्रह्मा जब सृष्टि करने वाले हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, तो भगवान उनसे हाथ मिलाए। लेकिन जब सुदामा को देखे, सुदामा से मिले, तो भगवान क्या किए, गलवाही दिए। ये है प्रेम, प्रेम है गलवाही करना, गले से मिलना, न कि हाथ मिलाना। जब दो समान वाले लोग हों तब तो प्रीत प्रियतम दौर्भ्यम, दोनों बाहों में एक दूसरे को पकड़ लिए, स्वजे प्रेम विह्वला, आलिंगन कर करके दोनों के आंखों में अश्रु धारा बहने लगी, प्रेम से विह्वल हो गए। प्रश्न उठता है कि दोनों ने प्रणाम एक दूसरे को क्यों नहीं किया। जब हम मिलते हैं तो पहले तो कहते हैं प्रभु हरे कृष्णा पंचाकल त्रिवेश कृपा सुंदेव पत्ता नाम पावन वैष्णव, बाद में फिर गलबाही करते हैं, ये करते हैं ना। परंतु प्रणाम क्यों नहीं किए, क्योंकि दोनों पहले तो मित्र हैं। वसुदेव जी क्षत्रिय कुल के हैं तो उस रूप में बड़े हैं, नंद बाबा एज में बड़े हैं, दोनों बड़े हैं लेकिन एक कद में और एक पद में। नंद बाबा कद में बड़े हैं जहां वसुदेव जी पद में बड़े हैं। खैर ये तो फॉर्मालिटी हुआ, लेकिन वहां फॉर्मालिटी था नहीं, जिससे हम प्रेम करते हैं वहां फॉर्मालिटी नहीं होती है। जब फॉर्मालिटी हो गई वहां पर तो प्रेम हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रेम विह्वल, इतना प्रगाढ़ प्रेम था नंद बाबा और वसुदेव जी में, कोई एक दूसरे को प्रणाम करना भी भूल गए, सीधे आलिंगन कर दिए। एडिकेट नहीं रहा, जहां प्रेम होता है वहां पर एडिकेट नहीं होता है, यही है प्रेम की परिपाटी।
वहां एडिकेट नहीं होता है, और जहां एडिकेट है वहां प्रेम नहीं। सम्मान है, रिस्पेक्ट है, एक हो गया है स्वर्ण भाव या दूसरा हो गया माधुर्य भाव। प्रेम भी वाला माधुर्य भाव हो गया और प्रणाम करना एडिकेट ये सब ऐश्वर्य भाव हो गया। ऐश्वर्य भाव में प्रणाम होता है। वेद भागवतामृत में इसका वर्णन किया है, जब गोप कुमार वैकुंठ तक गए तो वहां बहुत एडिकेट देखे, कह रहे हम गलत जगह पर आ गए हैं, ये ठीक नहीं है। प्रेम में एडिकेट नहीं होता है। यहां का वर्ड आया हुआ है सस्वजे प्रेम बिहवल, प्रेम बिहवल होकर के, प्रेम के अधिभूत होकर के एक दूसरे को आलिंगित किए, इस प्रकार से बैठ करके आपस में बात करने लगे। कैसे हालचाल होता है मित्रों के बीच में यह देखना चाहिए, यह देखना चाहिए। वसुदेव जी और नंद बाबा के मुलाकात में कैसे हालचाल हो। प्रायः देखिए यहां पर नंद बाबा वसुदेव जी के घर पर गए हैं, यानी मथुरा गए हैं, तो कौन पहले बोलेगा वो भी सीखना चाहिए। प्रायः जब कोई हमारे घर आता है, आजकल देखा जाता है, तो लोग अपने से अपना खूब बड़ाई करना शुरू करते हैं। ये उचित नहीं है। उचित यह है कि जो आया है वो कुछ वार्ता करना शुरू करे और जिसके घर आया है वो सुने, बाद में बोले। लेकिन आजकल तो हम लोग अपना, अरे हमने ये कर दिया, आप जानते हैं कि नहीं, हमने तो धर्मशाला वहां खोल दिया, हमने वहां स्कूल बनवा दिया, अपना खूब बड़ाई करना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आया है वो कैसे आया है, उसमें दुख है कि सुख है, क्या है, पहले जानो कम से कम। तो भैया अपने घर पर है, ऊपर छत है, बरसा नहीं हो रहा है, खाना पीना सब ठीक चल रहा है, जो आया है वो सब ठीक तो है ना, पहले सुनो क्यों आया है, न कि अपना बड़ाई करना शुरू करो। अपना बात मत करो, सुनो। यह है जब दो व्यक्ति मिलते हैं ना तो सुनना चाहिए पहले। तो वसुदेव जी चुपचाप थे और नंद बाबा अब कह रहे थे वसुदेव जी से, कहते हैं दृष्टया संसार चक्रे स्मित वर्तमान पुनर्भव उपलब्धो हमान दुर्लभम प्रिय दर्शनम। कहते संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है हे वसुदेव जी प्रिय व्यक्तियों का दर्शन, और कितना सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोग आज मिले हैं आपके दर्शन से, मैं बहुत ही धन्य हो गया। फिर कहते हैं कि समय भी कैसा क्रूएल चीज है, सभी प्रेमी लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, कोई व्यक्ति अपने प्रेमी को छोड़ना नहीं चाहता है। न एकत्र प्रिय संवास सुहृदा चित्र कर्मणाम ओघेन विहमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा। जो प्रेमी होते हैं हमेशा एक साथ रहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि कोई एक साथ रह नहीं सकता है, सबको अलग होना है। जैसे बहती हुई नदी में कभी कभी घास पत्ते एक साथ आ जाते हैं लेकिन दूसरा धारा आकर के अलग कर देता है। हम लोग यहां पर बैठे हैं, सुन रहे हैं कथा, अच्छा लग रहा है सब कुछ, नहीं भी अच्छा बताओ जब ऐसे बैठना पड़ता है, है? और दूसरा समय आएगा कि सबको अलग कर देगा। तो इस प्रकार से यह बात कहने के बाद जब थोड़ा हालचाल हो गया तब अब कहे वसुदेव जी कि आशा करता हूं कि गोकुल में सब कुछ अब ठीक होगा। तो पहले पूछ रहे हैं कृष्ण और बलराम के विषय में, पहले कह रहे हैं कि मेरा पुत्र बलराम जो अपने मां के साथ में आपके पास रहता है वो तो आपको और यशोदा को ही अपना बाप मां समझता है, वह कैसा है? अपने पत्नी के विषय में नहीं पहले पूछ रहे हैं, बलराम जी के विषय में पहले पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद अन्य ब्रजवासियों के विषय में पूछ रहे हैं। जब पूरा पूछ लिए तब नंद बाबा अंत में, नंद बाबा समझ रहे थे कि वसुदेव के दिल में दुख है। जब बात कर रहे थे, प्रेमी समझ जाते हैं एक दूसरे के बात से देख करके, और दुख था कि उनके पुत्र मारे गए थे। तो नंद बाबा कहते हैं, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका अवशिष्ट अवरजा कन्या सा अपि दिवत गताम। कहते हाय हाय, ये दुष्ट कंस इतना बदमाश है कि देवकी के छह पुत्रों को मार डाला। यहां पर प्रश्न हो सकता है कि देवकी पुत्रा क्यों कहते हैं, वसुदेव पुत्रा क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि वसुदेव जी की आठ पत्नियां थी, तो उन पत्नियों से पुत्र थे, तो कंस उन पुत्रों को नहीं मारा था, जैसे बलराम जी रोहिणी से थे उनको नहीं मारा था, इसलिए कहा अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, देवकी के बहुत पुत्र हुए जिसको कंस ने मार डाला। देवकी के पुत्रों को मारा था, न कि अन्य सात पत्नियों के। और मगर अंत में मैंने सुना कि अंत में एक कन्या हुई थी, यह दुष्ट उसको भी मार डाला। तो इस प्रकार से जब हाल चाल हो गया, जब बात हो गया, तो वसुदेव जी समझ रहे थे कि नंद बाबा और ज्यादा समय रह जाएंगे, लेकिन वहां मथुरा गोकुल में उपद्रव अब शुरू होने वाला है, कंस अपना शुरू करेगा। और कृष्ण के प्रति उन्हें बहुत प्रेम था, वो जानते थे कृष्ण मेरा ही बेटा है। तो बल्कि आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन किया गया है कि नंद बाबा संतावना देते हुए कहते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि बलराम मेरा और यशोदा का पुत्र है, वैसे ही आप मान लीजिए कृष्ण भी आपका और देवकी का पुत्र है। तो वसुदेव जी कहा हां ये तो बात सही है, वह हम ही लोगों का पुत्र है। ये कहने का भाषा था, नंद बाबा कह दिए मुफ्त में है? कि देवकी कृष्ण भी आपके और देवकी का ही पुत्र है। और वसुदेव सही कहते हां बात सही है, कृष्ण हमारा और देवकी का ही पुत्र है। ही शब्द आया हुआ, ही मतलब निश्चय ही, कोई शब्द एनीवे। तो वसुदेव जी घबरा रहे थे और घबरा कर कहते हैं, करो वही वार्षिको दात दत्तो रागे दृष्टवा वयम च वह न इह अस्थेय बहुतिथ्यम संति उत्पातश्च गोकुले। कहते हैं यदि आप कर चुका चुके हैं, सब कुछ हो गया, मैं जानता हूं आप कुछ दिन और रहना चाहते हैं, न मतलब नहीं, यह मतलब यहां पर अस्थेय मतलब रहे, बहुत ही थी बहुत दिन तक आप कृपा करके बहुत दिन तक यहां मत रहिए, अब आप गोकुल जाइए, क्योंकि वहां पर उत्पात उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि सुन चुके थे कि उत्पात उत्पन्न होगा। इस प्रकार से इति नंदालयो गोपः प्रोक्ता ते सौरिणाजयु अनोभि अनंदुभिकेतस्तः अनुज्ञाप गोकुले। इस प्रकार से अनंद दुदुभ की या वसुदेव जी से विदाई लेकर के नंद बाबा अब गोकुल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। दो लोग प्रस्थान कर रहे हैं, इधर नंद बाबा प्रस्थान किए, उसी समय पुतना प्रस्थान की है। बात इतना ही था कि नंद बाबा बैलगाड़ी से जा रहे थे और पुतना खेचर थी, बगुला थी, बकासुर की बहन है बगुला, तो बगुला उड़ते हैं, तो खेचर खे मतलब आकाश मार्ग से जाने वाली पुतना थी, इसलिए थोड़ा देर हो गया। तो छठा दिन का बात है, श्री शुक उवाच नंदापति बच सौरे नह मृषेती विचिंतयन हरि जगाम शरणम उत्पाद उत्पादगम संगीत। इस प्रकार से सौरी यानी सुरसेन पुत्र वसुदेव जी के द्वारा कहे गए बात पर विचिंतयन विशेष रूप से चिंता कर रहे हैं कि वसुदेव ऐसा बात कहे हैं तो कुछ सत्य जरूर होगा, कुछ कारण जरूर होगा। उन्होंने क्या कहा था, बात क्या कहा था वसुदेव जी नंद बाबा को? हाँ, कुछ गड़बड़, कुछ उत्पात उत्पन्न हो रहा, उत्पात सब उत्पात। तो सोचो क्या उत्पात हो सकता है, है? उसी के विषय में सोच रहे थे। लेकिन ये भक्त की भावना है हरिम जगाम शरणम, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। भक्त लोग सीधे भगवान के शरण जाते हैं सब प्रकार से। तो सोच रहे थे कि उत्पात होगा, इसलिए हरिम जगाम शरणम, जगाम मतलब गए भगवान के शरण में, गए किस लिए? उत्पात आगमम संशित, उन्हें संशय हो गया था, क्योंकि वसुदेव जी झूठ नहीं बोल सकते हैं, ये क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कुमार हैं, और वसुदेव जी सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोले। अपने बेटा को लाकर कंस को दे दिए मारने के लिए, अपने सत्य का वचन प्राप्त कर। तो वैसे हैं अनकदुंद भी, जब उनका जन्म हुआ तो देवता लोग दुंदुभिया बजाए थे, वे वसुदेव जी हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो इधर वसुदेव जी चले, नंदबाबा चले सोचते हुए, और उधर पुतना सुखदेव घोषण करते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बाल घातिनी शिशु शिशुं चचार निघ्नंती पूरगाम ब्रजादिषु। इधर नंदबाबा चले और उधर कंस के द्वारा कंसेन प्रहिता घोरा, समय है ना, 15 मिनट और चलेगा, बाद में कथा खत्म कर दूंगा, लेकिन थोड़ा ये बड़ा सैद्धांतिक है तो मैं सोचा कि ये बात करना जरूरी है। तो कंसेन प्रहिता घोरा, जब सभा हुआ तो बात हुआ कि 10 दिन के बच्चों को मारना है। देखिए 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं शिशु कहा जाता है, और 5 साल के बाद में कुमार होते हैं। तो शिशुओं का लालन होता है और कुमारों का पालन होता है। तो यहां सब है शिशु चचार निघनंती, पुतना कुमारों को नहीं मार सकती थी, किसको मारने वाली थी? वो एक्सपर्ट थी, वो पीएचडी की थी, किसमें? शिशु को मारने में। शिशु का संस्कृत में अर्थ क्या होता है? जो खूब सोता हो उसे शिशु कहते हैं, जो सोने वाला उसे शिशु कहते हैं। छोटे बच्चे सोते ही रहते हैं, बहुत सोते हैं ना, हम लोग भी सोए थे, अभी भी सो जाएंगे ब्रह्मचारी आश्रम में, क्लास में भी सो जाते हैं, तो शिशु हो गए। एनीवे नहीं, सोने वाले को शिशु कहा जाता है, या जो शिशु करता हो वो भी शिशु है, ब्रह्मचारी से नहीं करते ना, कल सोते हैं ज्यादा, कोई बात नहीं। कम से न प्रहिता घोरा पुतना बाल घातनी, पुतना कौन थी? बाल घातनी, एक्सपर्ट थी बच्चों को मारने में, और वो भी कैसे बाल, कैसे बाल को? शिशुना, जो शिशु जो तो सोने में एक्सपर्ट है, छोटे बच्चों को निगनंती पूरा ग्राम बजादिशु। वो बॉम्बे भी आ जाएगी, पूरा मतलब शहर में, और ग्राम मतलब गांव में, गांव और शहर में घूम घूम करके बच्चे को मारती थी। कहां उसका प्रभाव था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नयत्र श्रवणादीनी रक्षोघ्नानि सर्वकर्मसु कुर्वन्ति शाश्वतां भर्तु। या तु धान्य च तत्र ही पुतना का प्रभाव वहां पड़ता है, राक्षसों का प्रभाव वहां पड़ता है जहां पर सात्विक पति भक्तों के रक्षक भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन न होता हो। लेकिन यहां पर कथा कीर्तन होता है, वहां पर पुतना और पुतना के नाती पोते जितने हैं चाहे बाप दादा, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वहां पर आधी ब्याधि कुछ भी काम नहीं करता है। कोई प्रश्न कर सकता है, अरे गोकुल में तो सच्चा श्री कृष्ण थे, सब लोग कृष्ण का नाम ले रहे थे, फिर भी पुतना वहां कैसे पहुंच गई? जा सकती है लेकिन असर नहीं डाल सकती है। पुतना जरूर गई। सुखदेव गोस्वामी यहां पर कहते हैं कि वह खेचरी पुतना नंद गोकुल आई, और नंद गोकुल आकर के जोषित्वा मायात्मानम प्राविस कामचारिणी, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर ली। क्यों? कि गोकुल में सब लोग सुंदर थे। जो कृष्ण का भजन करता है वो तुरंत सुंदर हो जाता, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसके जीवन में। कृष्ण से संबंध रखते ही वो व्यक्ति ब्यूटीफुल लगता है, हैंडसम लगता है। तो जिसको हैंडसम लगना है, मिरर मत देखो, बाल मत संवारो, केवल भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। भागवत कथा सुनो, मंगला आरती आओ, भगवान का सेवा करो, इसे मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया हम सब लोग। तो गोकुल में सब लोग ब्यूटीफुल थे, डैमसेल ऑफ ब्रज है, ब्रज का एक ब्यूटी है। अब पुतना देखने में खूंखार थी, अगली थी, तो तुरंत लोग पहचान जाते। तो जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है। भगवान भैया मथुरा जा रहे थे तो धुबिया को मार करके पैंट शर्ट पहन लिए हैं, नहीं तो पहले तो चड्डी पहनकर घूम रहे थे वृंदावन में। तो जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है। तो पुतना अपना भेष बनाई सुंदर, कभी मायात्मानम, माया के द्वारा। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान अपना माया पुतना को कुछ समय के लिए उधार दे दिए कि तो अच्छी बन जाओ। कैसी बनी वो पुतना? पुतना का श्लोक 5-6 में उसका वर्णन किया गया है कि उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पुतना लक्ष्मी जी का रूप धारण कर ली थी, हाथ में कमल लेकर के घुमाते हुए जा रही थी। तो कृष्ण का दर्शन करने कई लोग आ चुके थे, बड़े बड़े लोग भी, छोटे छोटे भगवान शिव स्वयं आ गए थे, अशेश्वर महादेव हैं नंदगांव में, तो भगवान शिव पहले आ गए थे। वो समझ गए थे कि मुझे अब विष पान करना है तो पहले अपना खेमा गाड़ लूं, वहां पर अपना डेरा लगा लूं। तो भगवान शिव पहले चले गए थे, बाद में पुतना आई थी। लेकिन जब लक्ष्मी का रूप धारण करके आई थी तो स्वाभाविक है, अब यहां का ऐश्वर्या राय या कोई मूवी एक्ट्रेस कहीं गांव में चली जाए तो गांव वाले क्या करेंगे? अपना जो भी बेस्ट है सब उसको देंगे, यही करेंगे ना, पूरा भीड़ तो लग ही जाएगा, अपना जो भी बेस्ट है सब उसको देंगे। तो लक्ष्मी जी ऐश्वर्या राय की ही मां है, बहुत बड़ी है, है? तो बहुत सुंदर है। तो लक्ष्मी जी को देख करके सब लोग, जितने पुरुष लोग थे वो भी देख रहे हैं। इन्हें विस्तार से तो बहुत विस्तार हो जाएगा, ये पुतना लीला 7 दिन का कथा है एक तरह से। पुतना जो अज्ञानता बोधक है, अज्ञान का स्वरूप है, तो जैसा संग वैसा रंग। तो अज्ञानता में सब लोग आ गए उस समय भगवान की माया से। गोप लोग भी देखने लगे, सौंदर्य को कौन नहीं देखता है, गोपियां भी मोहित हो गई। जब पुतना जा रही थी तो भगवान बाल ग्रस्तत्र चिंतवंत शिशुना यदृक्षयानंद गृहे तदंतकम। ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि गोकुल में सब कृष्ण के भक्त थे, तो वहां पर पुतना को जाने का सवाल ही कहां से उठता है। जा सकती है लेकिन कुछ हानि नहीं कर सकती है, वहां हरिभजन होता है। इसीलिए गोकुल में गई लेकिन अन्य किसी के घर पर नहीं। यदृक्षया नंद गृहे, नंद बाबा के घर पर असत अंतकम यदृक्षया मतलब बाय चांस। दूसरे के घर पर वो नहीं गई, कहां गई? नंद गृहे। और वहां पर कौन था? असत अंतकम, जो असत को अंत करने वाला है वो वहां पर था। यानी असत कौन थी? पुतना। और उसको अंत करने वाले कौन थे? कृष्ण। तो इस यदृक्ष आनंद गृह असत अंतकम बालम प्रतिक्षण निज उरु तेजसम दर्श तल्पे अग्नि युवाहितम बसी। कृष्ण के तेज को वह समझ नहीं पाए, ठीक वैसे ही जो गांव वाले वो जानते होंगे। गांव में स्त्रियां खाना बनाने के लिए डेली आग नहीं जलाती है, एक दिन आग जला दिया, खाना बन गया, बाद में राख से ढक देती थी। अंदर आग है, ऊपर से राख से ढका हुआ है, यही ना, बाद में राख हटा करके फिर फूंक करके और आग लगा लेती थी। तो वैसे ही अब ददर्श तलपे अग्नि, तलपे अग्नि, अग्नि नीचे है, युवाम हितम भसी और राख ऊपर है। भसी यानी राख, राख से जैसे अग्नि ढका होता है, अग्नि के तेज को नहीं देख सकते हैं, वैसे ही भगवान के तेज को यह पुतना देख नहीं सकी। अब आई थिंक इफ आई गो श्लोक बाय श्लोक तो गड़बड़ हो जाएगा, तो बंद करता हूं। तो जब पुतना देखी कृष्ण को, कृष्ण को तो भाप हो गया कि पुतना आ रही है। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहें कि उसने आंख, कृष्ण आंख बंद कर लिए। चचार आत्मा स निमिलते क्षणम, भगवान अपने आंख को बंद कर लिए। अब आचार्य लोग वहां पर कई एक प्रकार से बतलाए हैं कि पुतना को देख करके भगवान अपना आंख क्यों बंद कर लिए। तो कुछ चीजें मैं बतला देता हूं। ऐसे बल्वाचार्य कई एक व्याख्या दिए हैं, श्रीपाद जी को स्वयं व्याख्या दिए हैं। पहला तो पुतना अविद्या है। भगवान ने सोचा कि मेरे दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती है। यदि मैं आंख खुला रखूंगा तो ये पुतना का जो बनावटी रूप है ये टिक नहीं पाएगा, फिर लीला नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। कृष्ण सुर स्वम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। पुतना जो है अंधकार के समान है और कृष्ण सूर्य के समान है। सूर्य के सामने जैसे अंधकार नहीं टिक पा सकता है, वैसे ही भगवान के दृष्टि के सामने अविद्या रूपी पुतना नहीं टिक सकती है। भगवान ने सोचा कि ये बाल घातनी है, पुतान अभिनयति, कोई भी बालक हो, पवित्र बालक हो या अपवित्र बालक हो, सबको ये मारने वाली है। ये पवित्र बालक को ही मारने वाली है, यानी जैसे आजकल अबर्शन करते हैं, ये पुतना के नाती पोते हैं। जो डॉक्टर लोग अबर्शन करते हैं ना, ये पुतना के नाती पोते हैं। ये लोग भी बालक मारते हैं, चाहे वो कौन आत्मा है। जैसे इंद्र ले जा रहे थे कयाधु को प्रहलाद जी को मारने के लिए, वहां पर वो पुतना का ही स्वरूप था। पुतान अपी नयती, पुतान अपी जो पवित्र बालक है उसको भी मारती है। अपवित्र है तुम्हारे दूसरा बात है, लेकिन पवित्र को ही मारती है। तो ऐसे ही जो मां के गर्भ में बच्चा रहता है, नवजात शिशु, वो पवित्र है कि अपवित्र है? अबर्शन करने वाले जो सब पुतना के नाती पोते हैं। आप लोग कह देना कोई मेडिकल होंगे तुम बताना कि तुम लोग पुतना के संतान हो सब लोग। इसलिए भगवान ने सोचा कि ऐसे जघन कृत करने वालों का मुख देखना अच्छा नहीं, पापी का मुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए। फिर आंख बंद करके भगवान, कभी कभी कुछ बात याद नहीं आती है तो आंख बंद कर सोचते हैं हम लोग कि भाई कहीं भूल जाते हैं तो कहां था, तो मानो भगवान आंख बंद कर सोच रहे थे कि इसने तो इस जन्म में कोई अभी तक पुण्य किया नहीं है, शायद पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया हो, ये पुण्य किया हो तो भगवान पता लगा रहे थे इसने क्या पुण्य किया है, इसलिए भगवान ने आंख बंद किया। भगवान ने सोचा कि अरे मैं तो अभी तो कभी तक ऐसे पापिन का दूध नहीं पिया हूं, पता नहीं दूध कैसा लगेगा, मीठा होगा तीखा होगा क्या होगा है? तो जैसे कभी कभी कड़वा दवा होता है तो मां कहती बेटा आंख बंद करो, आंख बंद कर पानी पी लो दवा, कड़वा दवा आंख बंद कर पी लेते हैं, तो भगवान मानो आंख बंद कर लिए ये कड़वा दूध लगेगा इसलिए ये कर रहा हूं। फिर उसके बाद भगवान के गर्भ, भगवान के उदर में विश्व ब्रह्मांड निवास करता है और मानो सब जीव लोग तड़फड़ा रहे थे, अरे अरे भगवान पुतना का दूध पिएंगे तो विष लगाई है तो हम लोग क्या होगा, तो मानो भगवान आंख बंद कर संतावना दे रहे थे चिंता मत करो मैं उसका दूध पीऊंगा, जहर नहीं पीऊंगा, चिंता मत करो, जहर भगवान शिव पियेंगे, उनका काम है, हमारा काम दूध पीना, उसके लिए चिंता मत करो। तो उन असंख्य कोटि ब्रह्मांड जीवों को भगवान संतावना देने के लिए आंख बंद कर लिए। भगवान सोचे मैं गोकुल में आया माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन लो ये छठी के दिन में क्या दूध पीना पड़ा है, ये छठी का दूध हुआ वह जो है वह पुतना का बीज शुद्ध पड़ना। तो मानो भगवान आंख बंद करके शंकर जी को ध्यान कर रहे थे कि भाई मैं जो आया हूं जिस काम के लिए मैं तो वही काम करूंगा, मैं माखन मिश्री खाने आया दूध पीना हूं, मैं दूध पीऊंगा मैं और विष आप पी लेना। तो ध्यान कर रहे भगवान आंख बंद कर शिव जी को बोले जिस काम के लिए आप आए हो आप काम करो दूध पी लो। फिर भगवान सोचा कि देखो ये बाहर से तो माता का रूप धारण करके आई है, एक्चुअली इस कथा से पहले मैं भागवतम से जा रहा था, गोपाल चंपू में शिवाजी गोस्वामी कहते हैं जब वो लक्ष्मी का रूप धारण करके आई तो कृष्ण पड़े हुए थे, तो पुतना यशोदा को और रोहिणी को डांटने भी लगी कि तुम लोग कैसी स्त्री हो, अरे हमारे यहां तो स्वर्ग लोक में बच्चों का वो अपने को बता रही थी कि मैं ऊपर के लोक की हूं, ऊपर के लोकों में बच्चों का क्या ध्यान रखा जाता है, तुम पृथ्वी लोक वाले नहीं जानते हो, ये बेचारा दूल्हा पतला है, लाओ मैं इसको अपना दूध पिलाती हूं ताकि ये अमर हो जाए कभी मरे नहीं है, मजबूत हो जाए बलवान हो जाए। तब कहना ही क्या था, यशोदा मैंने कहा ठीक है ले लो भाई पिला दो दूध उसको थोड़ा बलवान हो जाए अमर हो जाए, मैया को बहुत प्रेम था। तो भगवान ने सोचा कि ये माता का रूप धारण करके आई है दूध पिलाना चाहती है लेकिन इसके हृदय में बड़ी क्रूरता है या मुझे मारना भी चाहती है, इसलिए मैं ऐसी स्त्री का जो हिपोक्रेट है उसका मुंह नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। भगवान सोचे कि मैं आंख खोला रखूंगा तो समझे कि निडर है कि हमसे डर नहीं रहा है और कहीं चली जाए तो फिर लीला नहीं हो पाएगा, इसलिए भगवान ने फिर भगवान सोचे कि क्या करूं, ये पहले बार ही स्त्री से मुठभेड़ हो गया इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दिया कि मारना है तो मार दूंगा लेकिन आंख बंद करके मारूंगा। और इस प्रकार से अनेक कारण है भगवान ने आंख बंद कर लिया। उसके बाद आंख भी सोचा, आंख अपने आप बंद हो गया, आंख ने सोचा कि भगवान भले आप इसे मार करके सदगति दे दो लेकिन हम इस सदगति ने न तो चंद्र मार्ग से जा पाएगी और न सूर्य मार्ग, दो ही मार्ग है मुक्ति का, न चंद्र मार्ग से न सूर्य मार्ग, ये दोनों आंख अपने आप बंद हो गए। दूसरा बताया गया कि आंख का कि ये पुतना का जो आंख है वह भी हमारे जाति का है, मतलब आंख आंख की जाति का है, आंख धारण की है लेकिन यह क्रूर राक्षसी है, इसलिए धिक्कार है ऐसे आंखों का, भले ही अपने जाति का हो, भले अपना ही हो, इसलिए आंख अपने आप बंद हो गए। महाराज निमि धर्मात्मा निमि जो सबके आंखों में निवास करता है, निमिष पर निवास करते हैं, उन्होंने पुतना रूपी दुष्ट को देख करके और आंख बंद कर लिए। तो ऐसे बहुत से कारण बताए गए हैं कि भगवान ने आंख क्यों बंद कर लिया। और जब पुतना जब दूध पिलाने लगी तो भगवान दूध पिए और दूध के साथ साथ उसका प्राण पीने लगे। जब भगवान जैसे पी रहे थे तो पुतना का सौभाग्य देखिए, जिन भगवान के नाम से मुक्ति हो जाती है, कोई मुक्त हो जाता है भगवान का केवल नाम लेकर के, उस पुतना के शरीर पर भगवान अपने पैर से जोड़ लगा करके, पैर बच्चे दूध पीते हैं तो खूब पैर से जोड़ लगाते हैं और मां के अस्तन को हाथ से पकड़ते हैं, तो पुतना के अस्तन को भगवान हाथ से पकड़े थे और उसके पेट के ऊपर पैर लगाए थे, तो पैर से दबा रहे थे। जिन भगवान का नाम लेने से व्यक्ति का मुक्ति हो सकता है, वे भगवान आज पुतना के शरीर पर खेल रहे हैं अपना पैर। जिन भगवान के चरण रज का इतना महिमा बताया गया है, जिन चरण रज को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिवादि देवता लोग भी ललायित रहते हैं, पुतना का कितना सौभाग्य है कि वह चरण और चरण रज पुतना के उदर पर है, पुतना का अस्तन पान भगवान कर रहे थे और उसका प्राण पान। तो कहे सा मुंच मुंच अलम इति प्रभास्तिनी, बस करो बस करो, छोड़ दो छोड़ दो, निष्पिंड चिल्लाने लगी कि छोड़ दो छोड़ दो, और लेकर के कृष्ण को उड़ गई, मर रही थी एक तरह से उड़ गई। और अब उसका रियल आकार, वो भी कृष्ण का लीला था, भगवान माना जाते लेकिन ब्रजवासियों से दूर ले जाकर गए, क्योंकि जब मरेगी तो उसका असली रूप आएगा। तो यहां पर वर्णन किया गया है कि पुतना जब मरी थी तो उसका शरीर का लंबाई 6 कोस था, चौड़ाई 2 कोस था और ऊंचाई 1 कोस, गिरिराज गोवर्धन बन गई थी, इतना लंबी चौड़ी पुतना थी। अब सब जगह हाहाकार मच गया, जैसे ही कृष्ण को लेकर गई यशोदा बेहोश होकर पड़ गई, बलराम को देखने रोहिणी गई तो बलराम वहां पर थे, सब ब्रजवासी लोग दौड़ रहे थे, यशोदा भी दौड़ रही थी अब चिल्लाते हुए। तो इस प्रकार से देखे ब्रजवासी लोग जाकर के कि बहुत विशाल काय शरीर पड़ा हुआ है वहां पर, और कृष्ण ऊपर जैसे कालिये पर नृत्य कर रहे थे उस प्रकार से कृष्ण वहां पर हंस रहे थे, बड़े खुश थे वहां पर कृष्ण। तो बाद में कृष्ण को उठा करके लाए गोप लोग इस गोपियों के हाथ में दे दिए और वहां पर टोटका मिटाया गया, गाय के गोबर से मूत्र से गाय के पंख से पोंछ से झाड़ा गया, ब्रज की जो वृद्धा स्त्रियां थी आकर के आशीर्वाद दी। बाद में उन्होंने कहा कि यशोदा को तुम इसे दूध पिलाओ, बच्चा दूध पीता है मतलब कि स्वस्थ है, दूध मां का नहीं पीता मतलब कि बीमार है तकलीफ है। तो ज्यों ही कृष्ण यशोदा मैया का आस्तन ग्रहण किए, हालांकि पुतना का आस्तन पी लिए थे है? अब यशोदा मैया का, दोनों धाय मां है, धात्रचिता दोनों धाय मां है। देखिए पुतना गर्ग संहिता में पुतना का पूर्व जन्म का कथा है, नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में पुतना रत्नावली नाम की बलि महाराज की पुत्री थी। भगवान जब वामन देव के रूप में आए थे तो भगवान के सौंदर्य से, भगवान छोटे थे तो उनके सौंदर्य से पुतना बड़ी प्रभावित हो गई और कही कि यदि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो तो मैं अपना अस्तन पान कराऊंगी। भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान अपने भक्तों का इच्छा पूरा करते हैं। भगवान को कुछ करने की इच्छा होगी तो भगवान कहेंगे एवं अस्तु, कोई बात नहीं। उसकी इच्छा थी कि मैं अस्तन पान कराऊंगा, भगवान कहा एवं अस्तु, मैं इच्छा पान करूंगा। और जब बलि को भगवान दंड देने लगे जब बासुकी नाग के द्वारा बलि बांधे हुए थे, बंधे हुए थे और इतना इंसल्ट हो रहा था, तो रत्नावली इस दृश्य को देखकर उसे बहुत घृणा हुआ, द्वेष हुआ, जिंघासया, द्वेष हुआ, उस पुतना में द्वेष हुआ कि यदि मेरा बेटा भी होगा तो भी मैं इसे मार डालूंगी, जहर पिला करके मार डालूंगी जो मेरे बाप को इतना अपमानित कर रहा है। तो भगवान ने कहा एवं अस्तु, ये भी तुम्हारा इच्छा पूरा हो। तो दूध पिलाने का इच्छा भगवान पूरा किए और जहर जो पिलाने की इच्छा थी भगवान के वो भी पूरा कर लिए। तो इस प्रकार से तावन्नादय गोपहा मथुरायाम ब्रजम गता बिलोक पुतना देहम बभूभू अति विस्मिताम। अब इधर नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ में आए और पुतना का शरीर देख करके बड़े विस्मित हो गए। करी ओवरनाइट, अभी तो मैं कल ही गया, इतना बड़ा पहाड़ कहां से आ गया ओवरनाइट। तो फिर और ग्वाल बाल लोग आए और पूरा कथा बताए क्या क्या हुआ। तब नंद बाबा कहते हैं नूनम बतरसी संजातो जोगेशो समासः स एवं दृष्टो हि उत्पातो यदा आह अनकदुंदभी। कहते हैं अनकदुंदभी वसुदेव जरूर ही नूनम मतलब निश्चय ही बतर ऋषि जो बात कहा है वसुदेव जी वो बिल्कुल सही हुआ। हो सकता है वसुदेव ऋषि हैं, जान गए, त्रिकाली हैं, तीनों काल को जानने वाले, वो जान करके हम बता दिए थे। अब सुन लिए थे कि कृष्ण रक्षित हैं। देखिए जब शरीर किसी का भी आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो ज्यादा समय शरीर स्थित नहीं रहता है, फिर सड़ने लगता है, तुरंत सड़ने लगता है। तो बस नंद बाबा कहे कि अब इसका शरीर सड़ जाएगा उससे पहले ही से जला देना चाहिए, नहीं तो बीमारियां फैल जाएगी। कल एवरम, अब ब्रजवासियों को बोले और जितने गांव के चमार थे अन्य लोग थे अपना अपना कुल्हाड़ी लेकर के आए उसका शरीर काटने के लिए। पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी होता है, पुतना का शरीर काटने के लिए कुल्हाड़ी ले लेकर गए, काट काट करके जला लेंगे। दह्यमानस्य देहस्य धूमस्य अगुरु सौरभ, अगुरु सौरभ अगरु का यानी धूप बत्ती का सुगंध आ रहा था पुतना के शरीर से जब उसका शरीर जलाया जा रहा था। क्यों न हो उत्थित कृष्ण निर्भुक्त, भगवान कृष्ण जिसके शरीर पर उठ करके लीला किए थे और कृष्ण निर्भुक्त कृष्ण के द्वारा उसका अस्तन पान किया गया था, चूस चूस कर अस्तन को भगवान पान किए थे। शरती आहत पाप मन, इस प्रकार से वह पवित्र हो गई थी पुतना और यह पवित्रता का सुगंध था, कृष्ण के स्पर्श का सुगंध था। कहते पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासनम जिंघासयामपि हरये अस्तनम दत्वा सद्गतिम। यह पुतना जो बाल घातनी थी, बच्चों के प्रति द्वेषी थी, बच्चों का खून पीने वाली थी, वह पुतना भी भगवान को अस्तन पाल करा करके सदगति को प्राप्त की। भगवान ने सदगति दी, जो बात यहां पर है वही बात यहां पर, जिंघासयाम हरये अस्तनम दत्वाम अपि सदगति, भगवान ने दिया उसको सदगति किया। तो फिर अब कहते हैं सुखदेव किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यक्षन्न प्रियतम किन्नु रक्षतातन मातरो यथा। फिर तो कहना ही क्या है, अरे जो श्रद्धा के साथ में भगवान को कुछ अर्पित करता है, यह पुतना तो द्वेष के साथ में गई थी कृष्ण को देने के लिए। जो भी ये पुतना कैसी थी, राक्षसी थी, खून की प्यासी थी, लोक बाल अग्नि संसार में बच्चों को मारने वाली थी, अपवित्र थी, उसको भी भगवान ने सदगति दिया। तो तो फिर उन हरे कृष्ण वालों का क्या जो कि श्रद्धा पूर्वक कृष्ण का भक्ति करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर कहते हैं कि उनका क्या, यक्षेन प्रेतम किम्नु रक्तासन मातरो यथा। रक्त मतलब जो संबंधित हैं कृष्ण से संबंधित, जैसे माताएं गौवें, जो कृष्ण को दूध का बात हो रहा था ना, दूध पिलाने का, गौओं का दूध कृष्ण पीते हैं, यशोदा मैया का दूध पिए, तो उन प्रियतमों का क्या कहना है। तो इस प्रकार से गौओं का गुणगान सुखदेव गोस्वामी किए हैं इन श्लोकों में, और बाद में कहे कि अंत में नंद बाबा, नंद अब ब्रज में प्रवेश किए, अपने घर में प्रवेश किए, और यशोदा जी कृष्ण को लेकर गाई, नंद सपुत्रम आदाय प्रत्यागतम उदारधि मूर्धन्योपाग्रम परमाम मुदम लेभे गुरुद्वह। अभी अंत में भी कुरु उद्वह शुरू में कहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और अंत में भी कुरु उद्वह, हे कुरुवंशी सुखदेव परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं। इस प्रकार से नंद बाबा बड़े प्रसन्नचित होकर के अपने पुत्र को अपने गोद पर लिए और सबको दान देने लगे। देखिए पहले जमाने में दान देने में लोगों को आनंद आता था, आजकल के पास लोगों के पास केवल लेना बैंक है, देना बैंक नहीं रह गया, केवल नाम लिखा है देना बैंक, लेकिन है लेना बैंक। पहले लोग देने में आनंद लेते थे, आज लोग लेकर के सफर कर रहे हैं, दुखी हैं। तो नंद बाबा अवसर ढूंढ रहे थे, एक अवसर मिला, मेरा बेटा सही सलामत है, खूब दान देना शुरू कर दिए। अब अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यौ एतो पुतना मोक्षम कृष्णस्यार अर्हक अद्भुतम श्रुश्रुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो इस संसार में पुतना बध का लीला, पुतना मोक्ष, बध नहीं मोक्ष, पुतना मोक्ष का लीला जो सुनता है, कृष्णस्य आरभक अद्भुतम, भगवान का यह बाल लीला पहला लीला है, छठी का दूध भगवान पिए थे पुतना के द्वारा, जो व्यक्ति यह कथा सुनता है, कैसे सुनता है, सुनया श्रद्धया मर्त्यो, मर्त्यो मतलब हम लोग मरने वाले हैं, मरने वाला व्यक्ति भी श्रद्धा के साथ में इस कथा को सुनता है, पुतना बध की लीला को सुनता है, तो गोविंद लभते रतिम, वह व्यक्ति भगवान गोविंद के चरणों में रति प्राप्त करता है, अनुरक्ति की प्राप्ति करता है। इस तरह श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत पुतना बध शीर्षक छठे अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न संक्षिप्त में बताया गया, कोई प्रश्न है किसी को, हाँ आगे आ जाओ।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जब बलि महाराज जो है भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिए, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपके कुल में मैं किसी को नहीं मानूंगा, फिर पुतना का वध क्यों किए?
ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न कर दिया। एनीवे, पुतना आजकल बोलने में भी थोड़ा दो बार सोचना पड़ता है, कहीं कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। एनीवे, पहले पुत्र को ही लोग अपना खानदान मानते थे, पुत्री दूसरे खानदान की है, वो धरोहर है, दूसरे की है। तो बलि के खानदान के जो हुए वो प्रहलाद महाराज हुए, उनके खानदान के हुए विरोचन हुए, और जितने भी हुए प्रलंबा असुर इत्यादि सब बलि महाराज के खानदान के हैं, लेकिन ये पुत्री है तो दूसरे एक परिवार की है, समझे? पुत्र होते तो नहीं मारते,
बलराम जी शायद मारते हैं ये पुत्री थी। इसे मतलब आजकल बोलना बड़ा समझ बोलना पड़ेगा, आजकल समाज बड़ा है। हाँ जी माइक दो।
जय श्री कृष्ण। भागवत कथा बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। खाली मुझे एक ये पूछना है कि भागवत कथा के पीछे कोई साइंटिफिक बेस भी है कि जो भगवान ने कथा लिखी है, भागवत लिखी है, वो हम सब सुन रहे हैं?
साइंटिफिक बेसिस यही है कि हम लोग आनंद चाहते हैं, संसार में हम आनंद चाहते हैं। आनंद का अनुभूति आत्मा करता है, ये देह नहीं। मरा हुआ देह है, आप रसगुल्ला खिलाओ चाहे डंडा मारो चाहे गाली दो, असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा वहां पर नहीं है। आनंद का अनुभूति जो है, आत्मा का स्वरूप है आनंद, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। तो आत्मा चाहता है आनंद। आनंद की कैसे प्राप्ति होती है, यह जो है भागवतम में वर्णन किया गया है। आत्मा सच्चिदानंद है लेकिन अणु है, और भगवान भी सच्चिदानंद है। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, वो भी सच्चिदानंद है लेकिन वो विभु है। तो जिस प्रकार से छोटे कुएं और तालाब की आवश्यकता एक समुद्र से प्राप्त हो जाती है, वैसे ही भागवत कथा सुन करके जीवात्मा को आनंद की अनुभूति होती है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। हम आनंद को ढूंढ रहे हैं लेकिन दुखवश संसार में आनंद को ढूंढ, जो निरानंद है, आनंद नहीं है। और भागवत जो है आनंद ही, केवल आनंद कंद, केवल आनंद ही आनंद है भागवतम में। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखाद्रमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहोर शिका भूई भावुका। कहते निगम कल्प तरोर गलितम फलम, समस्त वैदिक शास्त्रों का पका हुआ यह फल है भागवतम, और उस पर भी सुखा मृतम द्र संयुतम। हम तो खाए, पता नहीं आप खाए हो कि नहीं, अमरूद जब सुबह खा लेते हैं ना और मीठा हो जाता है, फल को जब तोते खा लेते हैं तो और मीठा हो जाता है। तो भागवत रूपी फल को सुखदेव गोस्वामी अपने मुख से चख दिए थे तो और मीठा हो गया है। तो पीवत भागवतम समालयम मूरहो रसिका भूई भाव का, हे रसिकगण क्षण क्षण में कॉन्स्टेंटली इस भागवत रस का पान करो, इसी में आनंद आएगा। इसके साक्षात उदाहरण है हाथ कंगन को आरसी क्या, परीक्षित महाराज 7 दिन तक खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, कथा सुन रहे थे, अपने जीवन भर सुने। 7 दिन का समय था, जीवन भर सुने, उन्हें आनंद मिल रहा था। तो हम लोग जो संसार का आनंद है, ये बहुत 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 चपल सुख कहते हैं, चपल सुख लौला गिरे, ये चपल सुख है, ये फ्लिकरिंग हैप्पीनेस है। लेकिन भागवत का जो है आनंद, वो आनंद का सरोवर है। भगवान रसराज है तो भागवत भी रसराज है, भगवान का वाङ्मय मूर्ति है भागवतम। हम जिस आनंद को ढूंढ रहे हैं उस आनंद की प्राप्ति होगी भागवत कथा सुनने से। तो भागवत का साइंटिफिक में यही है कि हमको आनंद देता है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा भाई, आपने बताया जो जो भक्ति में मार्ग में लगे हुए हैं, जो संपूर्ण भक्ति करते हैं तो उनको बाहर की जो हवा है, जैसे राक्षस लोग प्रवेश नहीं कर सकते, जैसे आप बताए पूतना वहां नहीं गई थी, जहां भक्ति जहां रहती है वहां पूतना। पर आजकल मैं सुना है, देखा भी है, जो अच्छा भक्ति करते हैं उनके यहां भी राक्षस लोग प्रवेश कर जाते हैं और बहुत सारी परेशानी में डाल देते हैं, वो लोग भक्ति भी बंद कराना चाहते हैं। तो वहां पर क्या भक्ति अच्छी नहीं रहती है, क्या मतलब रहता है?
भागवतम कहता है कि जहां पर श्रद्धा के साथ में भक्ति करते हैं वहां पर ऐसे लोग का प्रभाव नहीं होता है, भले आएंगे लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा। पांडवों को दिखाए तो बाहर से बहुत दुख था लेकिन उन्हें आनंद था, कि कृष्ण आनंद किसमें है? कृष्ण के स्मरण में
और दुख किसमें है? कृष्ण के विस्मरण में। दुख का कारण है कृष्ण की विस्मृति और सुख का कारण है कृष्ण की स्मृति। तो बाहर से दिखाई पड़ा पांडव लोग जंगल में भटक रहे हैं, लेकिन कृष्ण का स्मरण कर रहे थे तो उसमें आनंद था उनको। जैसे कभी कभी खूब दुख पड़ता है हम लोगों को, खूब दुख, सब रास्ते बंद हो गए हैं, सब रास्ते बंद हो गए हैं, और भगवान के पास आता है व्यक्ति, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, आंख से आंसू छलक आते हैं, वो कैसे आता है? आनंद से आता है। वो आनंद से आता है जब पिक पर होता है दुख, तब हम लोग धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, हम उस परिस्थिति पर हैं हम लोग अभी। हम लोग दोनों जिसको प्रगाढ़ निष्ठा है भगवान में, जैसे पांडव गण थे, दुख आएगा लेकिन वह दुख उनके मुक्ति का कारण होगा। इसलिए माता कुंती कहती है विपदा संतु न सस्यात् तत्र तत्र जगत गुरु। अरे भगवान इस विपत्तियों से, इस दुख से आपका दर्शन होता है, और आपका दर्शन होता है तो न पुनर्जन्म भवति, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो दुख दुख कैसे रह गया? वो तो भक्ति हो गया। तो बाहर से दिखाई पड़ता है दुख है लेकिन है नहीं, ये परसेप्शन है। कैसे आप लेते हो उसको? दुख के रूप में, सुख के रूप में। कोई व्यक्ति सो रहा है मंगला आरती में, अरे प्रभु चलो मंगला आरती जाना है, अब इसे कैसे लेते हो? अरे बदमाश लड़का है, हमको 12 बजे रात को आए, हमको उठा रहा है, मैं थका हूं, गाली गलौज करना शुरू, झगड़ा करना शुरू हो गया। दूसरा कहेगा पैर पकड़ा, प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, मैं तो माया में सो रहा था, आपने हमको जगा दिया। परसेप्शन है और कुछ नहीं है। कैसे आप इसको देख रहे हो ये देखना जरूरी है। और कोई प्रश्न?
जब वसुदेव जी के पास से नंद बाबा चले तो नंद बाबा पहले पहुंचे या पुतना पहुंचे?
पुतना पहुंच गई थी। पुतना मर गई तब वसुदेव जी आए, सॉरी नंद बाबा आए, कहे पहाड़ कहां से आ गए इतना बड़ा। पहले वो पहुंची थी, लीला खत्म हो गया था। ऑल राइट, सो लेट्स स्टॉप हियर। अच्छा, आराधना का एक और है।
पुतना पूर्व जन्म में कौन थी जो भगवान के शुद्ध भक्त इस जन्म में उसका अंतिम संस्कार किए जबकि राक्षस कुल में थी?
सब कथा हो गया, सीता जी का विवाह कहां हुआ, ये पूरा रामायण हो गया सज गया। अरे मैं तो क्या कह दिया तुमको, बताया था कि रत्नावली थी, बलि महाराज की पुत्री थी पूर्व जन्म में, और
थोड़ा सा सोची थी कि भगवान को इस बच्चे को मैं थोड़ा अपना स्तन पान कराऊं,
तो उस भगवान के विषय में सोचना भी तकलीफ है कि हम लोग सोचते नहीं है। नाम जप करते हैं तो भी नहीं सोचते हैं, माला जप करते हैं नाम जप नहीं करते हैं, माला घूम रहा है लेकिन मन कहीं और सोच रहा है। अरे सोचो, वही तो करना है, एक सेकंड भी लगा लो 100%। 63 हो जाओ, 36 रहते हैं, बहुत दिन से 36 आ गए हैं सामने ऐसे, अब 63 हो जाओ, सामने सामने आ जाओ, एक सेकेंड भी कल्याण हो जाएगा। एक सेकेंड कल्याण होने में या भगवान का साक्षात्कार करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, एक सेकेंड। जैसे उदाहरण के लिए जाड़ा का दिन है, -degree है, और ठंडा पानी में स्नान करना है, वो ठंडा का दुख कितना देर लगता है? एक सेकेंड। या खूब भूख लगा है और प्रसाद आ जाए, वो आनंद कितना देर? एक सेकेंड। एक सेकेंड का ही काम है बस, तो एक सेकेंड कंसंट्रेट करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तुमको सुई से डर लगता है, डॉक्टर सुई देता है उसे, कितने लोग चिल्लाने लगते हैं, वो दर्द कितना लगता है? एक सेकेंड, तो चिपकाया हो गया बस, दर्द खत्म। तो वही एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, वो एक सेकेंड के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन अभी समय नहीं है। इसके आधो में पुनियाद थोड़ा भी,
लेकिन
लव मात्र।
लेकिन प्रभु जी जब वो भगवान का दर्शन किए तो भगवान का दर्शन तो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो असाधारण व्यक्ति होगी तो भी तो भगवान का साक्षात्कार के सामने और ऐसा उसके मन में भाव आया, कुछ तो पुण्य कर्म की होगी पहले,
और उसमें भावना हुआ कि मैं उनको दूध पिलाऊंगी, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति है। और भगवान सुखदेव जी कहा हाँ ठीक है तो आएंगे पिलाने के लिए ना, भगवान तो ओपन कर दे दरवाजा कि आ जाओ पिलाओ। वही तो मैं कह रहा हूं कि हम लोगों में भावना ही नहीं हो रही कि मैं भगवान के लिए कुछ करूं। देखो नंद बाबा को देखो, वसुदेव जी को देखो, वसुदेव जी कारागार में थे, कृष्ण जन्म लिए तो लाखों गांवों को दान दे दिए। हम लोग तो इतने कंजूस हैं कि मुफ्त में दान नहीं देते हैं, कुछ कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ दो। यस हरिदास, माइक दे दो हरिदास को।
अब बोले कि एक सेकंड के, एक सेकंड भगवान का नाम प्रेम से लेगा तो भगवान प्राप्ति हो जाएगा। अच्छा पुतना रखे से,
मैं कहा एक सेकंड में भी।
अच्छा ठीक है, पुतना रखे से कभी भी कृष्ण को नहीं देखा था, पहले बार देखा, पहले बार दूध दिया, पहले बार देखा और पहले बार दूध पिलाया।
वो देखा था बलि महाराज के यहां पर वामन देव के रूप में।
अच्छा ठीक है,
बोलो।
हम तो जन्म से कृष्ण को देख देखे आया, अभी भी जॉब भी करे करे आया और डेली भी प्रसाद पा रहे हैं और डेली भी चरणामुदी लेते, लेकिन हमें मरने के बाद क्या हमारा शरीर सुगंध आएगा, चंदन का फिर सुगंध आएगा क्या? सोलह माला डेली जप करते, फिर भी भजन कीर्तन करते भगवान का नाम, फिर भी चरणामुदी लेते, क्या अभी भी सुगंध नहीं आते?
यह काम उनके ऊपर छोड़ दो।
किसका ऊपर छोड़ देगा?
भगवान के ऊपर। ये भगवान का काम है, अपना काम नहीं है।
अच्छा ठीक है, आप जो बोला भगवान है,
मैं बता रहा हूं उदाहरण। तुम खाते हो क्या, नापते हो कितना पेट भरा है? नापता है, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, एक समय अब नहीं चाहिए। वो नापते नहीं हो कितना भरा है, वैसे भजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अतः श्री कृष्णामाधि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वाद स्वयं एव अस्फुत्यदा। स्वयं एव, एव मतलब निश्चय ही, स्वयं मतलब वे। उन पर छोड़ दो, तुम मत नापो, तुम नापेगा तो मरेगा, कहीं नहीं, कहीं का नहीं रहेगा, नरक में जाएगा। उन नापो मत, छोड़ दो उनके ऊपर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें कृष्ण को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा करो कृष्ण तुम्हें देखने आए। ये मत कहो कृष्ण आओ मैं इतना अच्छा गाता हूं, देखो मुझे कितना अच्छा गाता हूं, नहीं, छोड़ दो उनको, उनका काम है। ऑल राइट, वी स्टॉप हियर। जय श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथाश्रम भागवतम की जय, पुतना माता की जय।